जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रील जगन्नाथ अभिषेक कथा के विषय पर 13 जनवरी 2016 को NVCC इस्कॉन पुणे में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण
स्वागत इस नाम जी के स्थापना 2013 में संक्षेप में आपको बताता हूँ भगवान जगन्नाथ के रूप में कैसे प्रकट हुए। ये रचना स्कंद पुराण में दी गई है, मैं आपको केवल संक्षेप में सुनाऊंगा। हजार साल पूर्व पृथ्वी में एक राजा थे जिनका नाम था
इंद्रधनुष।
बड़े धार्मिक राजा थे, आजकल के राजनीतिक राजा से नहीं। इनके मन में सदा एक ही भाव था, भगवान की सेवा। 24 घंटे सेवा में जुड़े हुए थे, भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, ये भक्ति बढ़ाओ, मुझे अपनी शरण में रखो। तो एक दिन उनके महल में एक ब्राह्मण पहुंचा। उन ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, तुम्हारी सदा यही रुचि रहती है भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान प्रकट हुए हैं इस पृथ्वी पर नील माधव के रूप में, ये रूप इतना सुंदर है कि अगर तुम्हें उनका दर्शन मिल जाए तो आनंद नहीं हो। ये कहकर ब्राह्मण वहां चल पड़ा। ब्राह्मण ने यह सूचना नहीं दी नील माधव कहां प्रकट हुए। फिर राजा की इच्छा थी नील माधव का दर्शन प्राप्त। राजा ने पहले सब ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, पूछा, आप में से कोई जानता है नील माधव की मूर्तियों का दर्शन कहां मिलेगा। सब ने कहा, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं इसका, पता नहीं कहाँ है नील माधव। राजा ने सब ब्राह्मणों को भेजा, इसको उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, विश्व के कोने कोने में, कहा हर गांव में जाओ, हर शहर में जाओ और पता लगाओ नील माधव की मूर्तियों में दर्शन काम आएगा। तो सारे प्रतिनिधि गए विश्व के कोने कोने में और किसको कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, कहाँ है नील माधव की मूर्ति। उन्होंने नील माधव का नाम भी नहीं सुना था। एक ब्राह्मण नहीं लौटा जिसका नाम था विद्यापति, वो जंगल में खोज रहा था, जंगल की गहराइयों में जा रहा था, सोच रहा था किसी न किसी जंगल के कोने में होंगे बाबा, पर वो नहीं लौटा। और जंगल में वो रह रहा था इस उद्देश्य के साथ कि नील माधव को खोज पाए, नहीं खोज पाए नील माधव को। और उस जंगल में एक और भक्त था भगवान का, उसका नाम था विश्वास। विश्वास जो था एक ही जाति का था, उनकी जाति पशुओं की नहीं पहुंच रही थी, सूअरों की। और हालांकि निजी जाति का था, पेशवा से था, वो तो कुछ एक कोटि का था। तो पेशवा की बेटी थी, इसका नाम था ललिता। विद्यापति ने देखा, हालांकि ललिता का जन्म नीचे घर नीच जाति में था, तो उसमें बड़े अच्छे गुण थे, रावण के गुण थे उस ललिता में। विश्वास ने विद्यापति ने कहा विश्वास से, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, और अगर विवाह हो। विद्यापति ने देखा कि विश्वास रोज दोपहर को कहा चले जाता है और अगले दिन लौटता है, कई बार दोनों दिन नहीं लौटता। और जब वो लौटता है तो उसके शरीर से इतनी सुगंध आती है कि ऐसे लगता है वो सरसों रंग से आ रहा है। तो विद्यापति ने अपनी पति ललिता से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं? रात को आते नहीं, कई बार दो दो दिन नहीं आते, जब आते हैं तो ऐसे लगता है वो उस वर्ग से आ रहे हैं, इतनी सुगंध आती है उनके शरीर से। ललिता ने कहा, मैं नहीं बता सकती, मेरे पिता ने कहा है ईश्वरी बताओ मैं कहाँ जाऊ, कहाँ जाते हैं। विद्यापति ने कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मेरे कैसे छुपाऊंगा? इस जंगल के कोने में एक भगवान की स्वयं प्रकट हुई हुई मूर्ति है। मूर्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो बनती है हाथों से, जैसे आप जयपुर जाते हो मूर्ति खरीदने के लिए बनवाने के लिए, और ये मूर्तियां बनती है शास्त्र के अनुसार। दूसरा है मूर्तियां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे श्रीनाथ जी, तिरुपति, भारत की कई मूर्तियां हैं जो कि स्वयं प्रकट हुए मूर्तियां मानी जाती हैं। तो ये नीलमाधव प्रकट विधि स्वयं जंगल के कोने में एक मूर्ति है और वहां नीलमाधव जी का नाम है, मेरे पिता नीलमाधव की सेवा करते हैं। जैसे ही विद्यापति ने नील माधव नाम सुना तो आनंद हो गए। आखिर उनके राजा ने उन्हें भेजा था किस लिए, किसको खोजने के लिए? नील माधव। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मुझे क्या नील माधव का दर्शन मिल सकता है? मेरे पिता मुझे ले जाएंगे? पति ने कहा, किसी हालत में नहीं, मेरे पिता कभी भी किसी को नहीं बताएंगे नील माधव का है। और पति ने कहा, नहीं। पति ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, पूछो पिता से अगर मुझे ले जाए। पिता से जब बेटी ने पूछा, पिता ने कहा, एक शर्त पर ले जाऊंगा तुम्हारे पति को, मैं उसकी आंखों में पट्टी लगा दूंगा, फिर उसको पता नहीं लगे वहां कैसे पहुंचा पहुंच रहा है। और जब हम नील माधव के पास पहुंचेंगे तो पट्टी खोल दूंगा, दर्शन मिल जाएगा, ये पता नहीं रहेगा कि यहाँ पहुंचना कैसे। तो पत्नी ने कहा मंजूर है। पत्नी ने क्या किया, एक कपड़े में सरसों के बीज दे दिए अपने पति को। और उद्देश्य ये था कि जब उनके पति को विश्वास ले जा रहे थे तो रास्ते में वो सरसों के बीज फेंक दे जाएंगे, ऐसे पता रहेगा कैसे उस स्थान में पहुंचे। तो जब विद्यापति पहुंचे बीज माधव के पास विष्णुपति ने पटनी खो दिया। जब नील माधव को दर्शन प्राप्त हुआ विद्यापति को दर्शन से इतना आनंद अनुभव हुआ कि विद्यापति सोचने लगे अब मैं समझा मेरे राजा की क्यों इच्छा थी नील माधव को दर्शन प्राप्त करना। नील माधव की मूर्तियां अत्यंत खूबसूरत थी जिसमें आप कल अंदाजा भी लगा सकते। तो जब वो पहुंचे विद्यापति ने देखा उनके ससुर विश्वास हो अनेक प्रकार के सेवा में जुड़ गए। वहां गए पेड़ों से फूल तोड़े और फूल तोड़कर नील माधव ने हार बनाया अपने हाथों से। फिर उन्होंने देखा कि पेड़ों से फल तोड़कर विश्वासु भगवान को भोग लगा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि उस तालाब नील माधव की मूर्ति के निकट एक तालाब था उस तालाब के जल से विश्वासु भगवान का अभिषेक कर रहा था। जैसे हमने अभिषेक किया भी हमने देखा भगवान को कई मंदिरों में रोज अभिषेक या स्नान करवाया जाता है। तो विद्यापति ने देखा कि विश्वासु इतनी श्रद्धा के साथ सारा काम अकेला कर रहा था। पहले भगवान का अभिषेक भगवान का हार बनाना भगवान को भोग लगाना। और विद्यापति ने ये भी देखा कि उस तालाब के बिल्कुल निकट किनारे पर एक पेड़ था और उस पेड़ में एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा पर नींद आ गई और तालाब में गिर गया और मर गया। तुरंत ही उसने चार हाथों का विष्णु का रूप ग्रहण कर लिया और विद्यापति के सामने भगवान के नाम जो है। तो विद्यापति सोचने लगे बहुत ही संसार में क्लेश ही क्लेश कष्ट ही कष्ट मुझे भी तालाब में आत्महत्या कर लेनी चाहिए तो मुझे भी फिर विष्णु का रूप प्राप्त हो जाएगा भगवान के नाम चले जाऊंगा बहुत ही संसार में क्लेश ही क्लेश निकलू यहां से। ऐसा विचार चिंतन कर रहे थे और विद्यापति प्यार हो रहे थे तालाब में वादी ने कहा हे विद्यापति तुम महल से निकले थे नील माधव को खोजने के लिए अब तुमने नील माधव को खोज लिया है लौटकर राजा को यह सूचना दो डरपोक बन के आत्महत्या मत करो। विद्यापति ने आत्महत्या के विचार छोड़ दिए। विश्वासु के मन में सदा एक भय था भय ये था विश्वासु तो गरीब आदमी था वो जो भगवान का हार बनाता था भगवान के भोग लगाता था सब जंगल के फलों से फूलों से तो उसको ये डर रहता था अगर इसको पता लग जाए नील माधव की मूर्तियां कहाँ है वो इंद्रदमन महाराज जैसे बड़ा व्यक्ति बड़ा बंदर बना देगा बड़ा बंदर बना देगा मैं जो निजी जाति का आदमी हूँ अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकूंगा पूजा की बात ही छोड़ो। नील माधव को छुपा के रोज ने नील माधव ने कहा हे विश्वास तुम कई सालों से मेरी सेवा कर रहे हो मैं बहुत ही प्रसन्न हूं अब मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भक्त एक बड़ा मंदिर बनाए जहां मैं निवास कर सकूं। मैं चाहता हूं कि महाराज इंद्रदमन मेरे लिए एक बड़ा मंदिर बनाए उसके मन में चिंता थी कई मरा निंदा को सूचना नहीं पहुंचा है ये माधव का है। उन्होंने विद्यापति को अपने दरबार को विस्तार कर लिया और तुम नहीं जा सके भी यहां से क्योंकि तुम जाकर राधा को कह दोगे नील माधव का है मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तुम नहीं जा सकते यहां से। तो फिर जालिता ने कहा मैं पति है तो छोड़ दो फिर उन्हें छोड़ दिया। तो विद्यापति भागा भागा महाराज दुर्गा के पास पहुंचे। महाराज को कहा मैंने नील माधव को खोज लिया है अब चलिए मेरे साथ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े नील माधव की तरह क्योंकि विद्यापति ने सरसों के बीज फेंके थे जब उन्हें ले जाया जा रहा था ये बीज सभी पेड़ बन गए तो इसके द्वारा उन्हें पता था कैसे नील माधव के ऊपर पहुंचे। राजा की अपनी सेना लेकर विद्यापति के साथ कहां पहुंचे
नील माधव के पास।
तो वो नील माधव के पास पहुंचे उन्होंने देखा नील माधव है ही नहीं और प्रकट हो गए। राजा बड़ा क्रोधित हो क्या चापलूसी की है मेरे साथ नील माधव को किसने छुपा लिया है। विश्वास से पूछा तुमने नील माधव को छुपाया है उसे गिरफ्तार कर लिया। विश्वास ने कहा नहीं मैं खुद आश्चर्य चकित हूँ कहा है मेरे नील माधव मैं तो उनकी पूरी सेवा करने आया हूँ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उनको सूचना मिल गई हाय नील माधव जो पहुंचा हुआ नील माधव राजा सोचने लगा मुझे अभी आत्महत्या कर लेनी चाहिए जीने का क्या फायदा अगर नील माधव का दर्शन नहीं मिले। तो उसी समय एक दिव्य वाणी ने कहा हे राजा अब मैं नील माधव के रूप में प्रकट नहीं होऊंगा अब मैं प्रकट होऊंगा धरु ब्रह्मांड के रूप में लकड़ी का भगवान और उस तालाब में तालाब का नाम दिया एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर रहा है इसमें विष्णु के चरण के सारे निशाने हैं। उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर तुम मेरा रूप बनवाया। राजा पहुंचा उस स्थान पर जहां की तालाब था लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा। राजा ने देखा कि उस लकड़ी के टुकड़े में सारे लक्षण तो राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को बड़े ध्यान से देखा वही लक्षण थे जो विष्णु जी के चरणों में होते हैं। राजा उस टुकड़े को उठाकर महल में ले जाना चाहता था। राजा ने प्रयास किया बिल्कुल उठा नहीं सका हिला नहीं सका उस लकड़ी के टुकड़े को। राजा की पूरी सेना ने प्रयास किया पूरी सेना उस लकड़ी के टुकड़े को ऊपर उठा नहीं सकी हिला नहीं सकी। फिर दिव्य वाणी द्वारा ये कहा गया हे राजा तुम विद्यापति और विश्वास को लेकर आओ वो उठा पाएंगे सेवा। फिर विद्यापति और विश्वास को बुलाया राजा ने। राजा ने सोने का रथ भी लाया था कीर्तन करते हुए लकड़ी के को लेकर राधा के घर में। अब आगे क्या समस्या थी, मां का रूप बनाना है, कौन बनाएगा, राजा नहीं, कई कलाकार स्कल्पर्स का निर्माण कर दिया, पर वो लकड़ी का टुकड़ा इतना मजबूत था कि जैसे ही किसी का हथियार वहां लगता था वो हथियार ही टूट जाता था। राजा थे, कई स्कल्पर्स को बुलाया, कोई भी सफल नहीं हुआ, जैसे कोई छूटा भी था वो टुकड़े को क्योंकि हथियार ही टूट जाता था। राजा फिर चिंता में था, अब क्या किया जाए, लकड़ी का टुकड़ा भी आ गया, कोई विश्वकर्मा जो देवताओं के महलों को बनाते हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट है, वो प्रकट हुए बूढ़े कलाकार के रूप में, वो आए राजा के महल में। उन्होंने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लड्डू बना सकता हूं, पर एक शर्त पर, मुझे 21 दिन के लिए एकांत में एक कार्य करने दो, अगर कोई भी 21 दिन के पहले मेरे कमरे में आएगा मैं वो कार्य को एकदम रोक दूंगा। राजा ने कहा, राजा ने कहा मंजूर है। तो राजा विश्वकर्मा ने ठीक 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 करके भगवान लड्डू बनाना आरंभ कर दिया, और राजा दरवाजे के सामने पीछे बैठा था, खानों को जोड़ दिया था दरवाजे की लकड़ी के साथ, वो टिक 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 सुनकर बड़ा आनंद अनुभव कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था आ भगवान का रूप बन रहा है जिसकी ओर राह देख रहे हैं बचपन से। टिक 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 कीर्तन तो 2 हफ्ते के बाद 14वें दिन पर टिक टिक आना बंद हो गया। राजा घबरा गया, क्या हो गया, टिक टिक नहीं आ रहा। राजा ने रावण से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए, आवाज नहीं आ रही अंदर से, कहीं विश्वकर्मा मर चली गया, हमें ना तो भोजन दिया है ना पानी दिया है, 2 हफ्ते मिले। राजा ने ब्राह्मण की सलाह ली, क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजा अंदर मत जाना, विश्वकर्मा ने पहले ही कह दिया था कोई अंदर आएगा वो प्रकट हो जाएंगे। राजा की पत्नी का नाम था गुंडीचा, बीजा ने कहा, नहीं नहीं अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है, देखो मर तो नहीं गया। राजा अंदर गए, जैसे अंदर गए विश्वकर्मा अप्रकट हो गए, और राजा ने देखा ये रूप जो आप देखते हो इसका
जगन्नाथ।
राजा ने पहले ही रूप देखा, हाथ नहीं पैर नहीं, राजा को लगा ये रूप अधूरा है, और राजा शोक में था दुखी था, क्योंकि मैं पहले आ गया ये रूप अधूरा रह गया है, राजा बड़ा दुखी था। फिर वहां पहुंचे नादमुनी, नादमुनी हमेशा ठीक ठीक स्थान पर ठीक समय पहुंच जाते हैं। नादमुनी ने कहा, ये राजा ये जो रूप है ये प्रमाणिक है, प्रसंग है। भगवान की इच्छा है कलयुग में भगवान इस रूप में प्रकट हो, इस रूप में लगना प्रकट हो। राजा ने जो ये संक्षेप में तथा संपुराण के अनुसार इस प्रकार भगवान प्रणी माधव प्रकट हुए लगना स्वतंत्र भगवान की इच्छा थी कि तुम अंदर प्रवेश करो। ये तो अधूरा नहीं है, ये तो प्रमाणिक है। सतयुग में भी जगन्नाथ जी की उपासना की जा रही है। जगन्नाथ जी अत्यंत दयालु है, अत्यंत लीलाए है भगवान जगन्नाथ जी, और पूरे जगन्नाथ जी क्या है पूरे जगन्नाथ जी के स्वामी। अगर के पैर नहीं है जब भी वो चलते हैं सारी दुनिया में और भगीरथ स्वामी के प्रयास है अंधने के कोने कोने में जगन्नाथ बलराम की
जय।
अभी आरती का समय हो गया।
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.